जन्माष्टमी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज का दिन, बलराम पूर्णिमा स्पेसिफिकली, क्योंकि आज के दिन बलराम जी का आविर्भाव हुआ। बलराम का मतलब है बल, और बल का यहाँ पे मतलब श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने भागवतम में, बल का मतलब ये नहीं है कि शारीरिक बल, बल का मतलब है नयम आत्मा बलहीन न लभ्य हो न बहू न श्रुते न वा। श्रुतियों में आता है कि जिसके पास बल नहीं है वो आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मा मतलब कृष्ण, ये वाली आत्मा नहीं, हमारी आत्मा। आत्मा के दो मतलब है, एक आत्मा और एक परमात्मा। वो ना आत्मा को प्राप्त कर सकता है ना परमात्मा को। सो बल मतलब जो बल हील है, कहने का मतलब है जिसमें बलराम जी का। इसलिए बलराम जी की, बलराम जी कौन सा बल देते हैं? आध्यात्मिक बल देते हैं, आध्यात्मिक बल। और उस आध्यात्मिक बल से हम भगवान को समझ सकते हैं, या भक्ति बल समझ लीजिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की। मतलब कृष्ण गए ना इस्कॉन वृंदावन में, कृष्ण बलराम भी है, राधा श्याम सुंदर भी है, मगर कृष्ण बलराम बीच में है। क्योंकि प्रभुपाद ने बोला कि जो बलराम जी का स्मरण नहीं करता उसको भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती, राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती उसको। नितायर करुणा होवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, दैट्स द आइडिया। नित्यानंद या बलराम जी की कृपा के बिना राधा कृष्ण की प्राप्ति असंभव है। तो बलराम जी कौन है? सो किसी की कृपा चाहिए तो पहले जानना भी पड़ेगा वो कौन है। नहीं मतलब ये नहीं कह सकते कि हमें कृपा दे दीजिए मगर हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते और ना जानना चाहते मगर कृपा चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है, दिस डिसरिस्पेक्ट। सो बलराम जी कौन है? श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के 79 चैप्टर का जो आखिरी श्लोक है उसमें सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यह अनुस्मरित रामस्य अनंत अद्भुत विक्रम, कि जो रोज दिन रात जो रोज बलराम जी का स्मरण करता है। और कैसे बलराम जी, जिनके कर्म बहुत अद्भुत है, अनंत है, अनंत लीलाएं अद्भुत कर्म है, उसको निश्चित रूप से भगवान कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होती है। प्रभुपाद वहां पपट में लिख रहे हैं कि अद्भुत कर्म का मतलब क्या है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जिनके कर्म अद्भुत है, आप सोचोगे अद्भुत कर्म का मतलब या भगवान है तो उनके कर्म अद्भुत हो गई, बट अद्भुत कर्म का मतलब है कि बलराम जी के क्रियाओं को आप समझ नहीं सकते बहुत आसानी से, असंभव है। अगर बलराम जी का लीलाएं पढ़ोगे जो कि ऑफकोर्स कम है कृष्ण भगवान की लीलाओं के कंपैरिजन में, तो वो समझना मन से अगम्य है, अचिंत्य है, अचिंत्य खलुए भाव नताम सर के नहीं हो चाहिए। मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल्स बताऊंगा बलराम जी के लीला में जो कि कंफ्यूजिंग है, और जबकि ऐसा लगेगा उन लीलाओं में कि बलराम जी एक्चुअली कृष्ण के एंटी हैं, पर बलराम जी है नहीं, बलराम जी भगवान कृष्ण का ही दूसरा रूप है। प्रभुपाद ने कृष्ण लीला में लिखा है कि बलराम जी और कृष्ण में क्या अंतर है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अंतर है उनके शरीर का रंग। कृष्ण क्या है? श्याम सुंदर है, घन श्याम है, और बलराम जी बलराम जी का रंग गौर है, श्वेत, वाइट, वाइटिश है, बस ये अंतर और कुछ नहीं है। ये हो सकता है कृष्ण भगवान येलो ड्रेस पहनते हैं, पीताम्बर कहते हैं ना, और बलराम जी क्या कौन सी ड्रेस पहनते हैं? नीली, तो उनको नीलाम्बर कहते हैं, नीलाम्बर कह सकते हो। बस ये इतना थोड़ा सा फर्क है। और ये हो सकता है कृष्ण भगवान मुरली रखते हैं अपने साथ, और बलराम जी क्या रखते हैं?
हल
रखते हैं। बलराम जी कृष्ण भगवान और बलराम जी दोनों ने दिखाया कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में है मुरली, मतलब गाय। मुरली गाय के लिए रखी थी ना भगवान ने, एटलीस्ट एक्सटर्नल रीजन ये था, इंटरनल रीजन था अपने भक्त को आनंद देने के लिए, गोपियों को बुलाने के लिए, वह एक्सटर्नल रीजन मुरली गाय के लिए रखी थी। जब भगवान जाते थे वन में गायों को चराने, तो फिर गाय चली जाती, बहुत सारी गायें होती थी भगवान वन में चराने आ रहे थे। कितनी गाय थी कृष्ण भगवान के पास? 9 लाख कुछ, वो तो ब्रज में थी, मगर गाय चराने जाते थे, हजारों गाय चराने आते थे पूरे गाँव की, और फिर जब वन में चरने जाती थी तो इधर उधर चली जाएंगी, फिर बुलाएंगे कैसे? सो या तो एक एक नाम से बुलाओगे, तो वो भी भगवान करते थे। तो कदम कदम टेर एक जगह है वृंदावन में, वहां पे खड़े होके और बुलाते थे गायों को, जो भी उनका नाम होता था, मृदंगमुखी और जो भी बुलाते थे। पर कितने लोग कितने गायों को नाम से बुला लेंगे, वो तो पूरी रात ही हो जाएगी, घर भी जाने, तो मुरली बजाते थे वो, और गाय मुरली के पास सुन के भाग के अपने आप आ जाती थी। सो मुरली प्रतीक है गायों का, और बलराम जी के पास हल है, वो प्रतीक किसका है? खेती का। सो कृष्ण बलराम मतलब कृष्ण बलराम की पूजा मतलब खेती और गाय। दैट्स कुछ स्कॉलर ऐसा कहते हैं, एटलीस्ट शिला प्रभुपाद अपने पॉपर्ट में ऐसा लिखते हैं कि असली लाइफ कृष्ण बलराम की प्राप्ति करनी है तो आपको अगर रैली में प्राप्ति करनी है तो लैंड पे रहो, खेती करो, गाय रखो और अपना भजन करो, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, जस्ट वन एस्पेक्ट। सो बलराम जी कोई अंतर नहीं, बलराम जी कृष्ण ही है, बजरंग अलग, कृष्ण का ही वैभव प्रकाश है, यूं समझ लीजिए। कृष्ण भगवान ने अपने आप को एक्सपैंड किया और अपने आप को दो में बनाया, और एक रूप कृष्ण ही रहेगा, एक रूप बलराम बनेगा, ये समझ लीजिए बस, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा कोई अंतर नहीं है। सो बलराम जी स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान होगा नहीं, इस जैसे राधा रानी कौन है? यहाँ कुछ लोग कहते हैं राधा और कृष्ण की शादी हुई थी, ये तो गलत हुआ था, भैया शादी नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं साथ में रहते थे, तो इसका क्या उत्तर दोगे आप? मुझसे पूछा था कोई डिवोटी कि कितने लोग पूछते हैं कि कितनी गोपियों का भगवान ने रासलीला की, तो गलत है नहीं, अश्लील है, तो किसी और की वाइफ थी, जो भी था। मगर एक्चुअली उसका आंसर क्या है? उसका आंसर बहुत सिंपल है कि राधा की एक्चुअली भगवान की कभी शादी हुई नहीं, एटलीस्ट उपनिषद तो ये कहते हैं, कृष्णा नित्य नित्य ब्रह्मचारी है। सो क्यों शादी नहीं? हम तो देखते हैं कि एक तो शादी भी हो गई और गोपियों के आदमी रासलीला ना चाह रहे, दोनों ही चीजें हैं, मगर नहीं हुई एक्चुअली शादी। क्योंकि कृष्णा गोपियां कौन है? गोपियां स्वयं कृष्ण है। भगवान ने अपने आप को कई रूपों में क्या कहते हैं, एक्सपैंड, कैसे कहते हैं, विस्तार किया, और कई रूपों में विस्तार करके उनमें से एक रूप राधा बन गई, एक रूप बलराम बन गए, और इस तरह से राधा भी कृष्ण है और बलराम भी कृष्ण ही है। सो कहने का मतलब है कि बलराम जी में भगवान की तरह शक्ति, क्योंकि भगवान खुद है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बलराम जी अनंत शेष के अवतार है, या उनका एक और नाम है संकर्षण। कृष्ण भगवान से बलराम जी आते हैं और बलराम जी से फिर प्रकट होते हैं संकर्षण, अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव संकर्षण, वैकुंठ में संकर्षण, इसको महासंकर्षण कहते हैं, और उन महासंकर्षण से फिर प्रकट होते हैं अनंत शेष, विष्णु की शैया जिसमें विष्णु लेटते हैं। तो इस तरह से हायरार्की है। वैसे एनीवे बलराम जी का नाम संकर्षण क्यों है? क्योंकि संकर्षण मतलब क्या होता है? जो सबको एक साथ रखते हैं, संकर्षण, आकर्षण, जो आकर्षण करते हैं। सो एक संकर्षण बलराम जी को इसलिए कहते हैं क्योंकि बलराम जी की शक्ति, संकर्षण जो है उनका नाम, उनकी शक्ति साइंटिस्ट ग्रेविटी के रूप से जानते हैं। ग्रेविटी को ना, सो दैट मैजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अट्रैक्ट्स, विच एक्ट्स एज अ डिस्टेंस। न्यूटन सरप्राइज था कि ये धरती और सूरज एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है, नहीं जादू लगता है। तो वो कह रहे थे कि तो जादू है, जादू ही होगा नहीं, एक पत्थर वहां पड़ा, एक पत्थर यहां पड़ा, एक दूसरे को खींच रहे हैं वो, ये हम सब एक दूसरे को खींच रहे हैं हम सब, मगर हमें पता नहीं लग रहा क्योंकि हम बहुत छोटे हैं। धरती हमें खींच रही है, हम भी धरती को खींच रहे हैं, मगर क्योंकि धरती बहुत बड़ी है इसलिए उसने हमें खींचा हुआ है, हम नहीं खींच पा रहे उसको। सो ये जो शक्ति है ग्रेविटी, ये शक्ति है, हमें पता है क्यों है ये नहीं पता, मगर हमें शास्त्र बता रहे हैं क्यों है ये शक्ति। किसकी शक्ति है? बलराम जी की शक्ति है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि जो संकर्षण है, अनंत शेष है, वो अपने सर पे सारे ब्रह्मांड को रखते हैं। सुना नहीं सुना? ये एक्चुअली भागवत में आता है, जब चित्रकेतु महाराज जब जब भगवान के दर्शन करने गए वैकुंठ में, संकर्षण के दर्शन किए उन्होंने, तो संकर्षण जी बहुत वो अनंत शेष के रूप में देख, सांप के रूप में, विष्णु की शैया सांप के रूप में ना, और उन्होंने देखा कि उनके सर पे अनेक ब्रह्मांड है, जैसे जैसे पपीते के बीज नहीं होते छोटे छोटे, अनेक ब्रह्मांड, और उनको उनको संभाल के रखा हुआ है, कैसे रखा, अपनी शक्ति से, ग्रेविटी से। ये एक मतलब है संकर्षण का। और दूसरा मतलब है संकर्षण का, प्रभुपाल लिख रहे हैं, संकर्षण मतलब आकर्षण, जो हमेशा दूसरों, जो हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों में संधि बनी रहे, लड़ाई ना हो। बलराम जी का आइडिया ये है कि कभी लड़ाई ना हो। कृष्ण भगवान का आइडिया है लड़ाई होती रहे। और नहीं, कृष्ण भगवान थोड़े अलग है, कृष्ण भगवान ने लड़ाई कराई, हमेशा फूट डाली, और बलराम जी ने हमेशा कोशिश की कि वो मिल जाए। जैसे उदाहरण के लिए बलराम जी ने बहुत कोशिश की कि दुर्योधन की शादी सुभद्रा से हो जाए, पता है कि संबंध बन जाए कौरवों पांडवों का, और फिर ये लड़ेंगे नहीं, आराम चलता रहेगा। लोगों की शादी किसने तोड़वाई? कृष्ण भगवान ने। एंड देन उसके बाद बलराम जी ने फिर से कोशिश की, कैसे ये आपको पता नहीं होगा, दुर्योधन के बेटे का नाम था लक्ष्मण, ये लक्ष्मण अलग है जो रामायण के लक्ष्मण है, और बलराम जी की बेटी का नाम था शशिरेखा, ये भागवतम में नहीं आता, हरिवंश पुराण उसमें आता है शशिरेखा, कौन नाम था वत्सल। तो बलराम जी ने सोचा चलो ठीक है, सुभद्रा की शादी तो नहीं हुई अर्जुन से, मैं अपनी बेटी की शादी कर देता हूँ दुर्योधन के बेटे के साथ, तो सॉरी सुभद्रा की शादी दुर्योधन से नहीं हुई, तो मैं अपनी बेटी के दुर्योधन के बेटे के साथ कर दूंगा। तो लक्ष्मण की शादी शशिरेखा से उन्होंने कहा चलो हम कर देते हैं, मगर वो भी शादी तोड़वा दी किसने, अगे तोड़ा कृष्ण, वो कैसे तोड़ा मैं बाद में बताऊंगा। फिर बलराम जी ने सोचा कि ये तो संधि हो ही नहीं रही है, तो बलराम जी ने फिर आखिरी चीज सोची कि अब मैं दुर्योधन की बेटी थी एक, जिसका नाम था लक्ष्मणा, और कृष्ण भगवान का एक पुत्र था जिसका नाम था सांब कह लो, तो जाम्बवती और कृष्ण के पुत्र थे, उन्होंने सोचा चलो सांब की शादी करा देते हैं लक्ष्मणा से। तो उन्होंने कहा सांब से कि जाओ अब कर लो, मतलब प्रपोज कर लो। तो वो शादी कृष्ण भगवान ने तुड़वाई नहीं थी, मगर कृष्ण भगवान की वजह से टूटी थी। That's all the same thing. I'll tell you why. So, बलराम जी का हमेशा कोशिश रही कि वो यदुकुल और पांडव और कौरव इनको सबको साथ में लेके चले, मगर कृष्ण भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया वो बात अलग है, और बलराम जी ऐसा क्यों सोच रहे थे वो बात अलग है, मगर बलराम जी का स्वभाव है कि सबको साथ में रखे। जैसे जब बलराम जी क्या है, बलराम जी भक्ति करने का बल देते हैं, नहीं जब हम सब में भक्ति होती है बलराम जी की कृपा से तो सब साथ में रहते हैं, जब भक्ति कमी होती है तो एक दूसरे से लड़ते हैं, लड़ाई होती है, पॉलिटिक्स होती है, नहीं। तो अगर आप कृष्ण की भक्ति करोगे बिना बलराम के तो लड़ाई होगी, पॉलिटिक्स होगी, इसलिए कृष्ण बलराम साथ में होते हैं। दिस आई एम जस्ट थिंकिंग माई सेल्फ, इसलिए प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम रखे वृंदावन टेम्पल में, दैट माइट बी वन रीजन। और बलराम जी वही हैं जिनसे शिव जी को शक्ति मिलती है, नाउ दैट्स अनदर थिंग, क्योंकि बलराम जी से कौन आते हैं, संकर्षण, और संकर्षण ही शिव जी के आराध्य हैं। संकर्षण मतलब अनंत शेष, शिव जी किस पे ध्यान लगाते हैं, अनंत शेष पे ध्यान लगाते हैं। अनंत शेष तो पता है ना सबको, पता है नहीं, नहीं बता लो सबको पता है अनंत शेष कौन है, मैं ऐसे ही फ्रेंच बोले जा रहा हूँ। बलराम तो पता है ना कौन है, या पूरे लेक्चर क्या पूछोगे बलराम जी कौन है, कुछ कह नहीं सकते, ये दिल्ली है सब पागल है यहाँ, आई नॉट बी सरप्राइज्ड। सो अनंत शेष है जिसपे विष्णु भगवान लेटते हैं, देखा नहीं टीवी में, तो सांप जो है शेषनाग, हाँ वही है, उन्हीं को अनंत शेष। तो बलराम जी से कृष्ण से बलराम आए, और बलराम जी से कौन आया, संकर्षण वैकुंठ में, और संकर्षण जी से आए अनंत शेष, और शिव जी इन अनंत शेष पे ध्यान करते हैं, विष्णु पे नहीं करते, विष्णु पे भी करते हैं मतलब ऐसा नहीं है, बट अनंत शेष के डिवोटी है, इसलिए शिव जी अपने गले में सांप टांग के रखते हैं, देखा है ना, मतलब उनको कोई शौक तो है नहीं सांप टांगने का, वो पागल तो है नहीं जो सांप टांग के बैठे रहेंगे, सांप क्यों टांगते हैं, फिर जैसे हमेशा उनको अनंत शेष का स्मरण आता रहे इसलिए सांप टांगते हैं वो। सो शिवजी बहुत बड़े डिवोटी हैं। तो शिवजी का स्वभाव कैसा है, शिवजी का स्वभाव बहुत माइल्ड, आशुतोष कहते हैं नहीं, बम बम बोले भोलेनाथ भोले, क्यों स्वभाव है, क्योंकि लाइक फादर लाइक सन, क्योंकि अनंत शेष और बलराम जी भी बहुत सिंपल रहते हैं, बलराम जी माइल्ड है नहीं, हमेशा साथ में रखते हैं सबको, बना के रखना चाहते हैं, तो शिवजी का स्वभाव भी ऐसे ही है, वो भी भोले हैं साथ में रखते हैं, मगर बलराम जी का जब गुस्सा आता है तो बहुत ज्यादा आता है, ये भी बात है, ऐसे शिव जी को भी जब गुस्सा आता है तो प्रलय हो जाती है, सो दैट क्वालिटी इज देयर शिव जी में, मगर जो तो बलराम जी जो है उनका स्वभाव है कि वो सॉफ्ट भी है और जनरली माइल्ड है, काम है, पॉलिटिक्स नहीं करते और हमेशा सीधे साधे सबको साथ में रखना चाहते हैं, उनका स्वभाव ऐसा है। मगर बलराम जी के कर्म बहुत अजीब है, कार्य बहुत ही अजीब टाइप के हैं, जिनको समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऐसा लगेगा कि बलराम जी को अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, ऐसा लगेगा जब भगवान की लीलाएं देखोगे, ऐसा लगेगा कि बलराम जी कृष्ण के एंटी हैं, मगर ऐसा नहीं है, और वैसे भी शास्त्रों में लिखा है कि महान लोगों की क्रियाओं को समझना असंभव है, ऑलमोस्ट असंभव है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल, ये जब बलराम जी, चलो पहले एंड में बात करते हैं, जब बलराम जी नैमी शरण्या गए, नैमी शरण्या फॉरेस्ट था, तो वहां पे कथा हो रही थी, भागवतम शुरू यहीं से होती है, सो वहां पे कौन कर रहा था, रोमहर्षण जी कथा कर रहे थे, बहुत सारे ऋषियों को, सुता को समझते हैं, बहुत सारे ऋषियों को बैठे हुए थे, तो बलराम जी वहां पे गए, और बलराम जी वहां पे गए क्यों गए, एक्चुअली कृष्ण भगवान से गुस्सा होकर, दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, उनको कृष्ण भगवान पर डाउट तो नहीं कह सकते, बट एक्चुअली बहुत गुस्सा आ गया था, वो क्यों आया था आई टेल यू, बट गए उस कथा में, तो वहां पर रोमहर्षण बैठा हुआ था, रोमहर्षण अपना कथा कर रहा था, वो उठा नहीं कथा में बलराम जी का रिस्पेक्ट करने के लिए, तो बलराम जी ने एक तिनका लिया, क्या कहते हैं, ग्रास का, और उसको मंत्र बोले और उससे उसको गला काट दिया। नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप सोचोगे ये क्या अजीब सी बात है, वो उठे नहीं, उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी तो उसको मार दिया, ये बड़ी अजीब सी बात है, ये बलराम जी ने किया, और वहां विष्णु ने या कृष्ण भगवान ने यहां किया, मतलब आप विष्णु की कथा सुनते हो कि भृगु मुनि आए, और भृगु मुनि ने विष्णु के क्या किया, विष्णु भगवान के छाती पे एक्चुअली लात मारी, मतलब ये भी नहीं उठे, ऐसे नहीं उठा नहीं है कुछ, सिर्फ लात मारी, और विष्णु भगवान ने क्या बोला भृगु मुनि को, कि आपके पैर में चोट लग गई होगी इसलिए मैं आपके पैरों को अभी अभिषेक करता हूँ, चिंता मत करिए, मतलब ही बस स्पीकिंग लाइक दैट, और बलराम जी ने यहाँ पे वो उठा नहीं बेचारा, और उसका गला काट दिया। सो क्या कहोगे आप कैसे समझोगे बलराम जी, ऐसे लगता है तो ऑर्डिनरी आदमी की तरह, रिस्पेक्ट नहीं मिली तो मार दिया किसी को, ये तो महान आदमी के फीचर्स लक्षण नहीं है ना, महान आदमी को तो ऐसा करना चाहिए जैसे विष्णु ने किया, यहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है चलो, मगर ऐसा नहीं है। सो बलराम जी ने ऐसा क्यों किया, बलराम जी ने ऐसा किया, प्रभुपाद लिख रहे हैं, बलराम जी ने ऐसा किया क्योंकि रोमहर्षण किसकी कथा कर रहा था वहां पर बैठ के, इतने सारे ऋषियों के सामने, कृष्ण भगवान की चर्चा, कृष्ण की हो रही थी, भगवान की चर्चा हो रही थी, ऑफ कोर्स, और कोई मेटेरियलिस्टिक टॉपिक तो नहीं हो रहा था, तो पुराणों की, और उसमें भी कृष्ण भगवान की चर्चा कर रहा था, और बलराम जी ने देखा कि कृष्ण की चर्चा कर रहा है मगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करना आती, नहीं कर रहा है कृष्ण की चर्चा, सब कुछ ठीक है, मगर इसको महान लोगों की, महात्माओं की रिस्पेक्ट नहीं करना आती, और इनफैक्ट बलराम जी तो खुद ही भगवान के एक्सपेंशन है, और ये मेरे भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो बलराम ने सोचा कि अगर ऐसा व्यक्ति कृष्ण कथा करेगा और आगे जाकर इससे इस व्यक्ति से सब लोगों ने भगवान की कथा सुन ली और सीख ली, तो अर्थ की बजाय अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि जब अहंकारी व्यक्ति भगवान की कथा बोलता है तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, सर्प उचिष्ट अपय हो, वो उसी प्रकार होता है जैसे दूध को सांप ने छू लिया हो। तो दूध तो वैसे अमृत माना जाता है, मगर अगर सांप छू ले तो वो जहर बन जाए, एक बूंद भी चला जाए उस अमृत में तो वो जहरी बन जाता है। सो बलराम ने सोचा ये तो अनर्थ करेगा ये। सो कृष्ण भगवान की भक्ति को नष्ट कर देगा, बल्कि कृष्ण भगवान का अपयश फैल जाएगा इस संसार में, क्योंकि इसकी तरह लोग भी कृष्ण कथा सुनेंगे, कृष्ण कथा सुन के भगवान के सो कॉल्ड भक्त बन जाएंगे बाहर से, मगर अंदर से अहंकार होगा। और फिर लोग कहेंगे देखो कृष्ण के भक्त ऐसे ही हैं, और लोग कहेंगे कृष्ण के भक्त ऐसे हैं तो किसका अपयश फैलेगा, कृष्ण का, इसलिए उन्होंने रोमहर्षण को मार दिया। बलराम जी कुछ भी करते हैं तो हमेशा उनके माइंड में एक ही विचार है, कृष्ण बस। वो आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, वो आपकी प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है कि बलराम जी जब द्वारका में थे तो ये दुर्भिद था, दुर्भिद सुना है, दुर्भिद पता है किसको कौन था, मोस्टली लोगों को नहीं पता है। पर दुर्भिद कौन था, दुर्भिद एक बंदर था, वानर, वानर। और रामायण में राम भगवान के अवतार में, रामायण में राम भगवान के साथ एक्चुअली दुर्भिद ने रावण के अगेंस्ट लड़ाई की, उसकी आर्मी में एक बानर था दुर्भिद, यानी वाज फेमस। सो दुर्भिद जो था उसने लड़ाई की राम भगवान की आर्मी में, ही वाज अ गुड डिवोटी। हो क्या रहा है, ओके मैं क्या कह रहा था, माधव हाँ दुर्भिद तो वहां पे उसने लड़ाई की राम, तो मगर प्रॉब्लम ये थी, यानी ये प्रॉब्लम है बाद में बताऊंगा। सो दुर्भिद जो था उसको राम तो अच्छे लगते थे मगर लक्ष्मण इतने अच्छे नहीं लगते थे, समझ। तो राम की आर्मी में था मगर सबके अपने अपने आइडिया होते हैं, नहीं जैसे आप लोग हमारे साथ हो, मगर सबके अपने आइडिया है, उसको क्या कर सकते हो। तो वो जो सीड था उसके माइंड में कि लक्ष्मण इतने ठीक नहीं है, हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, वो राम ठीक है, वो बीज बाद में फलित हो गया। जब राम भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर दी, राम भगवान चले गए, तो दुर्भिद जो है वो उसने फ्रेंडशिप कर ली नरकासुर से। और इनफैक्ट नरकासुर कौन था, कृष्ण का पुत्र था, अब असुर था मगर भगवान का बेटा, वो भी अजीब सी बात है। वो कहां से पैदा हुआ था, जब भगवान ने वराहदेव का अवतार, वराहदेव कहते हैं ना भगवान ने, वराहदेव तो पता है ना, हाँ वराह अवतार था, जो सुअर का फॉर्म नहीं लिया था जब धरती उठाने के लिए, हिरणाक्ष से बचाने के लिए, जब भगवान ने वराह का अवतार लिया तो उन्होंने धरती लेके आया नीचे पताल से, और जब धरती और जब पृथ्वी देवी वराहदेव के स्पर्श में आई तो एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम एक्चुअली उसका नाम नरकासुर तो नहीं होगा, बाद में पढ़ा होगा, रियल नेम मुझे पता नहीं क्या था, बट बाद में फिर वो खराब हो गया, असुर बन गया, एक्चुअली अपने फादर के अगेंस्ट हो गया, कृष्ण के अगेंस्ट हो गया, वो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप भगवान के बेटे हो तो आप यू आर अ जेंटलमैन, आप भगवान के बेटे हो गए भी असुर हो सकते हो। सो जो भगवान के बेटे नहीं है हम लोग, उनका क्या हाल होगा, हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि कोई सरप्राइज नहीं है कि अगर आप कुछ भी कर डालो हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा उसमें। भगवान का बेटा ही असुर बन गया और उसने सोचा कि ठीक है चलो अब मैं कृष्ण को मार दूंगा, वही देखे वेरी प्राउड ऑफ दैट। तो दुर्भिद इसका फ्रेंड बन गया नरकासुर का, और फ्रेंड बन के उसके दिमाग में भी उल्टे फुलटे विचार आ गए, एक्चुअली दुर्भिद बिकेम अ डीमन, वो भी असुर बन गया उसके संग से। पहले उसको लक्ष्मण जी अच्छे नहीं लगते थे और राम की आर्मी में लड़ाई की जो भी की उसने, फिर नरकासुर ने कुछ कहा होगा, देखा ना तो ऐसे ही हाल होता है तुम्हारा, इतनी लड़ाई की क्या मिला तुम्हें, जंगलों में घूम रहे हो, जो भी बोला होगा उसका भी दिमाग आउट हो गया, वो डीमन बन गया। तो उसने और फिर कृष्ण भगवान ने नरकासुर को मार दिया, एक्चुअली वध किया नरकासुर, क्योंकि बहुत बड़ा असुर था ना, तो नरकासुर वहां पे रहता था ये असम में, असम गए हो ना आप लोग, मतलब कोई गया असम? असम साइड में उसका महल भी अभी भी गुवाहाटी के पास नरकासुर का, तो ही यूज टू स्टे देयर। और कृष्ण वहां गा रहे थे द्वारका, सो सब लोगों ने कंप्लेन की कि नरकासुर तो बहुत ही पापी हो गया है, हमें तंग कर रहा है। आसाम से न्यूज आई, लोगों ने बोला कुछ करिए भगवान, तो मानने का ठीक है चलो उसको अब मार देते हैं। मगर प्रॉब्लम ये थी कि वो भगवान का पुत्र था, और किस भगवान और पृथ्वी देवी का, और पृथ्वी देवी उस लीला में सत्यभामा जी के रूप में थी। तो भगवान ने सत्यभामा को बिठा के ले गए गरुड़ पे और जाके उसको मार दिया, दैट्स ऑल। तो द्विविध ने शपथ ली कि मैं अब कृष्ण भगवान को मार डालूंगा, मेरे फ्रेंड को मार दिया नहीं। सो वो आया और बलराम जी अपना द्वारका में अपना मतलब द्विविध ने कहा चलो कृष्ण को तो मारूंगा, उससे पहले बलराम को मारूंगा, क्योंकि बलराम से वैसे ही हेट थी, लक्ष्मण जी का अवतार है ना वो। उन्होंने कहा वो जो बीज है जो हेट का वो अब अंकुरित हो गया। और द्विविध आया और उसने वहां पे बलराम जी का अपमान किया। बलराम जी अपनी अपनी क्वींस के साथ ही वॉज टेकिंग बाथ, ही वॉज इंजॉइंग मतलब ही वॉज टेकिंग बाथ वो अपने। तो द्विविध आया वो तंग करने लगा बलराम जी को, बलराम मतलब ही वॉज कंप्लीट नॉनसेंस। और फिर बलराम जी ने उठाकर उसको मार दिया, लड़ाई हुई मार दिया। अब क्वेश्चन ये है कि बलराम जी ने मारा क्यों उसको, दैट्स अ क्वेश्चन, क्यों मारा, क्या है ये, मतलब ऐसे मारना पीटना ये सब क्या हो रहा है। बलराम जी ने बहुत लड़ाई की, सो क्यों मारा, तो बलराम जी ने क्यों मारा उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अब मैंने बताया बलराम जी क्या सोच रहे हैं, हमेशा बलराम जी हमेशा कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ नहीं सोच सकते वो, एक्चुअली कुछ सोच ही नहीं सकते। जैसे हम लोग अपने सिवाय कुछ नहीं सोच सकते, ऐसे बलराम जी भगवान के सिवाय कुछ नहीं सोच सकते। नहीं आप लोग अपने को छोड़ के कुछ नहीं सोच सकते, अल्टीमेटली आप प्रोग्राम में भी अपने लिए आए हो कि मैं बलराम पूर्णिमा अटेंड कर लूंगी या कर लूंगा, है नहीं। भक्ति भी हम इसलिए करते हैं मेरा फायदा हो जाएगा, जो हम अपने बारे में सोचते रहते हैं वो हम हटा नहीं सकते। ऐसे बलराम जी हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते हैं। तो बलराम जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि द्विविध ने मुझ पर अटैक किया, मेरा डिसरिस्पेक्ट किया, दैट्स नो प्रॉब्लम। जैसे रोम हर्षन ने बलराम जी का डिसरिस्पेक्ट किया, बलराम जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मगर बलराम जी को यह प्रॉब्लम थी कि रोम हर्षन के एक्शन की वजह से भगवान कृष्ण का अपयश होगा, इसलिए मार दिया। ऐसे द्विविध ने जब बलराम जी का निरादर किया, बलराम जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। मगर बलराम जी ये सोच रहे थे, ये जीवा गोस्वामी लिखते हैं गोपाल चंपू में, कि बलराम जी उससे कुछ ही दिन पहले व्रज होके आए थे। व्रज तो पता है ना क्या होता है, क्या होता है, हैं?
वृंदावन का एक नाम है,
हाँ वृंदावन का एक नाम है, बाय द वे। सो भगवान वृंदावन होके आए थे उससे कुछ महीने पहले ही। कृष्ण भगवान ने बलराम जी को भेजा था, कृष्ण भगवान ने दो जनों को भेजा था वृंदावन, बलराम जी और उद्धव को। तो जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं उद्धव पूर्ण आख्यानम बलराम पूर्णम आख्यानम, मतलब बलराम जी और उद्धव को दोनों को भेजा था कि ब्रजवासियों को थोड़ा, बहुत दुखी थे ना भगवान के, तो उनको थोड़ा शांत कर दें, भगवान के बारे में बताएं, थोड़ा शांत हो जाएंगे। दोनों के दोनों प्रॉमिस करके आए थे वहां ब्रज में कि हम कृष्ण को वापस जरूर लेके आएंगे। इनफैक्ट बलराम जी ने जरूर प्रॉमिस किया था, और जीवा गोस्वामी लिखने का बलराम जी ने प्रॉमिस कर दिया तो वो टूट सकता नहीं, भगवान को जाना ही पड़ेगा। सो बलराम जी ने बोला कृष्ण से आकर के भी मैं तो प्रॉमिस करके आया हूँ तुम्हें व्रज जाना है वापस, तुम द्वारका में बैठे हो तो फिर अब मेरे प्रॉमिस, भगवान ने कोई प्रॉब्लम, तुम्हें प्रॉमिस किया तो वो तो टूट सकता ही नहीं है। सो बलराम जी ने, और बलराम जी ने भी देखा व्रजवासी बहुत दुखी है, बहुत दुखी है बिना भगवान के। एक्चुअली उससे पहले बलराम जी से पहले उद्धव गए थे, उद्धव ने देखा कि व्रजवासी बहुत दुखी है, उद्धव ने बोला मैं भगवान को बोलूंगा आप जल्दी आइए वापस ब्रज, आपके बिना सारे ब्रजवासी मर जाएंगे। मगर उद्धव जी आजा कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि उद्धव जी तो भगवान के सेवक है ना। मगर बलराम जी भी बोल के आए मैं कृष्ण को लेके आऊंगा पक्का वापस, और वापस गए तो बलराम जी ने कहा अब तो जल्दी जा लेना आना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो बलराम जी ने सोचा कि कृष्णा द्वारका में इसलिए बैठे थे कि कृष्ण भगवान को कहीं असुरों को मारना था। अभी जो भी भगवान का अवतार तो इसलिए हुआ है ना, धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि योगे योगे विनाशाय च दुष्कृताम। सो भगवान द्वारका गए थे कि भाई मैं आराम से सारे खलनायकों को असुरों को मार डालूंगा, सो बलराम ने कहा भी भगवान को व्रज चलाने का एक ही रास्ता है, जब सारे असुर मर जाएंगे तो भगवान अपने आप वृंदावन चले जाएंगे। तो बलराम ने सोचा चलो ठीक है, मैं भी भगवान की थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, तो मैं भी असुरों को जल्दी जल्दी मार देता हूँ, कृष्ण भी मार रहे हो, जब सब मर जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो जब बलराम जी ने द्विविध को देखा तो बलराम ने सोचा चलो इसको मार देता हूँ जल्दी से, दो तीन को मैं भी साफ कर देता हूँ, और भगवान का वृंदावन में जाना आसान हो जाएगा, जल्दी चले जाएंगे। सो बलराम जी ने द्विविद को इसलिए नहीं मारा क्योंकि डिसरिस्पेक्ट किया है या उसका उनके फ्रेंड नरकासुर, बलराम जी अपने माइंड में ही सोच रहे थे कि जल्दी से भगवान को वृंदावन ले जाएंगे, और इसलिए इसका वध बहुत जरूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और ये ऐसे बलराम जी एक्चुअली बलराम जी के माइंड में सिर्फ यही थॉट था कैसे भगवान को जल्दी से वृंदावन में ले जाए, इसलिए सारी लीलाएं वृंदावन के लिए हो रही है, मथुरा लीला, द्वारका लीला, सब लोग जो भी कर रहे हैं वो एक ही कृष्ण अपने भक्तों से वापस मिल जाए, व्रज के भक्तों से, इसलिए सारी महाभारत का युद्ध भी इसलिए हुआ, सब कुछ इसलिए हुआ है। बस कृष्ण ने महाभारत का युद्ध क्यों किया, इससे सारे असुर मर जाए, नहीं सारे गंदे क्षत्रिय मर जाए तो जल्दी मरे और फिर मैं दोबारा से सब फ्री होके कहां चला जाऊं, वृंदावन चला जाऊं। सो ही डिड सो मेनी थिंग्स, सो अपने भक्तों के लिए की भगवान ने सारी लीला, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। और बलराम जी ने क्या किया, बलराम जी का यह भी एक्शन बहुत अजीब सा है, दुर्योधन को किसने सिखाया गदा चलाना, पता है ना, बलराम जी ने सिखाया था। इनफैक्ट अभी अभी हमने सुना कि दुर्योधन से शादी कराना आते थे बलराम जी, नहीं सुभद्रा की, बल्कि सब लोग अगेंस्ट थे, कृष्ण भगवान भी अगेंस्ट थे, भैया ये नहीं हो सकता नॉनसेंस, दुर्योधन से कौन शादी कराया, बलराम जी का मैं तो उसे कराऊंगा सुभद्रा की, ऐसा लग रहा है बलराम जी कृष्ण की एंटी है, नहीं। फिर इसका हो गया हम क्या कहते हैं लक्ष्मणा शशि रेखा का, उसमें भी उस लक्ष्मण और शशि रेखा की जब सॉरी लक्ष्मण और शशि रेखा की जब शादी तय हुई तो कृष्ण ने तोड़वा दी थी, इनफैक्ट इसमें ये भी तोड़वाई थी, जब बलराम जी ने सोचा था सुभद्रा और दुर्योधन की शादी है तो कृष्ण ने तोड़वाई थी, पता है कैसे तोड़वाई थी, अर्जुन से कहा था ना कि तुम भगा के ले जाओ सुभद्रा, बलराम जी को बहुत गुस्सा आया, बलराम जी ने सोचा कि मैं अर्जुन को मार दूं, लेकिन इमेजिन क्या बलराम जी को नहीं पता था कि अर्जुन भगवान के डिवोटी हैं और अर्जुन के साथ तो रह रहे हैं बलराम जी कई बार, और इतना गुस्सा आ गया उनको कहा मैं अर्जुन को ही मार दूंगा, मतलब ऐसा लगता है कि बलराम जी आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ भी करते जा रहे हैं, कृष्ण से गुस्सा हो गए, अर्जुन को मार दूंगा, और फिर उसके बाद जब लक्ष्मण और शशि रेखा का हुआ कॉन्सेप्ट, ये इंटरेस्टिंग था एक्चुअली, जब बलराम जी ने अपनी बेटी शशि रेखा की शादी तो लक्ष्मण से करना चाहिए दुर्योधन के बेटे से, तो जो शशि रेखा थी वो कृष्ण भगवान के पास गई, उसने कहा कि भैया मैं तो शादी नहीं करना आती उस बेवकूफ से, दुर्योधन के बेटे से मैं थोड़ा शादी करूंगी, तो कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है चलो, कृष्ण भगवान ने कहा उससे कि ऐसा करो कि तुम घटोत्कच के पास जाओ, घटोत्कच पता है ना भीम का पुत्र, और उसे हेल्प मांगो, तो घटोत्कच में पावर्स थी, तो घटोत्कच आया और जब इसकी शादी हो रही थी लक्ष्मण की तो वो शशि रेखा का रूप लेके आ गए, वत्सल का रूप, और दोनों की शादी हुई, वो बड़ा खुश था शादी हो गई, भाई उसने घूंघट उठाया तो घटोत्कच निकला, वो इतना डर गया उसने शपथ ली मैं कभी शादी नहीं करूंगा शशि रेखा से, खुद ही भाग गया वहां से डर गया। एंड दुर्योधन बिकेम वेरी अनहैप्पी, दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया कि यार पहले तो सुभद्रा से प्रॉब्लम हो गई, अब शशि रेखा से प्रॉब्लम हो गई, मतलब कृष्ण बलराम ऐसे ही है, एक्चुअली कृष्ण ऐसे ही है, उनको पता है बलराम जी तो चलो बलराम जी तो गुरु हैं दुर्योधन के, कृष्ण ऐसे ही है, बलराम जी तो हमेशा कोशिश कर रहे हैं। तो फिर जब सांब ने प्रपोज किया लक्ष्मणा को, ये भी कृष्ण का आइडिया था, और सॉरी बलराम जी का आइडिया था कि सांब से बोला कि तुम जाके लक्ष्मणा से शादी करो, दुर्योधन की बेटी, लास्ट ट्राई कि कौरव पांडव में संधि हो जाए, दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से शादी हो जाएगी कृष्ण के बेटे सांब से तो ठीक हो जाएगा, दुर्योधन को हेट है कृष्ण से संबंध बन जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, अब मुझे तो वो रिस्पेक्ट करता ही है तो सब ठीक हो जाएगा, तो दुर्योधन ने मना कर दिया एक्चुअली सांब को कि अब शादी नहीं करूंगा मैं, तो मेरे बेटे का तुमने ऐसा किया, और सांब को पकड़ लिया वहां पर एक्चुअली, और पकड़ने के बाद बलराम जी आए वहां पर और बलराम जी ने कहा कि शाम को वापस करो, और वापस नहीं किया तो बलराम जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने हल से पूरे हस्तिनापुर को खींच के गंगा जी में डालने लगे, पूरी सिटी को ही खींच के डालने लगे गंगा जी में। उधर सबने आके माफी मांगी तब जाके ठीक हुआ। अब ये क्या हो रहा है, ये बड़ी अजीब सी बातें लग रही है। नहीं, कृष्ण क्या एंटी है, अर्जुन को मारना चाहते हैं, मतलब हो क्या रहा है ये? बट एक्चुअली उसके पीछे रीजन है, बलराम जी को फेवर कर रहे हैं, सॉरी बलराम दुर्योधन को फेवर कर रहे हैं बलराम जी। सो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे प्रभुपाद ही लिख रहे हैं कि बलराम जी ने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया और फेवर किया, इसलिए नहीं कि वो चाहते थे कि हमेशा संधि हो जाए। दैट वॉज नॉट, वो एक्सटर्नल था, इंटरनल ये था कि बलराम जी चाहते थे कि दुर्योधन के जल्दी से दुर्योधन मर जाए। कि दुर्योधन किसका अवतार था पता है? कली का, साक्षात कली का अवतार है दुर्योधन, साक्षात कली है वो, उसको मारना बहुत मुश्किल था। तो बलराम जी ने कहा भी वैसे तो दुर्योधन बड़ी मुश्किल से मरेगा, पॉसिबल नहीं है, और दुर्योधन के पास शक्ति भी बहुत थी और पावर भी बहुत थी। तो बलराम ने सोचा कि इसको मारने का एक ही तरीका है, जब इसके पाप बढ़ जाएंगे तो अपने आप मर जाएगा। कांट यू क्लोज दैट गेट? मतलब व्हाट्स अ प्रॉब्लम, व्हाट्स अ प्रॉब्लम, इट्स सच अ सिंपल थिंग, मतलब व्हाई दे आर नॉट क्लोजिंग दैट गेट, जस्ट क्लोज दैट गेट। सो तो उसके पाप बढ़ाने थे, दैट्स ऑल। जैसे कंस को मारना बहुत मुश्किल था, नहीं तो भगवान ने कहा ठीक है पाप बढ़ने दो, जब पाप का घड़ा भर जाएगा अपने आप मर जाएगा ये। सो बलराम ने सोचा कि भी दुर्योधन के पाप बढ़ाने का एक ही तरीका, इसको अहंकारी बना दो। तो बलराम ने कहा ठीक है चलो मैं ही इसको गदा युद्ध सिखा देता हूं, इसमें इतना अहंकार आ जाएगा कि ये फिर वैष्णव अपराध करना शुरू हो जाएगा, नहीं और इसको ये भी लगने लगेगा देखो बलराम जी मेरे साथ हैं, इस बात का अहंकार आ गया इसको। दूसरी बात कि उसने कहा अब तो मैं संसार के सबसे बेस्ट गुरु से गदा युद्ध सीखा है, मुझे कोई नहीं हरा सकता, और अब मैं सारे पांडवों को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जितना अहंकारी हो गया तो बहुत जल्दी उसकी मृत्यु उसके सामने ही थी। इनफैक्ट जब दुर्योधन और भीम की लड़ाई हुई थी अंत में, पता है ना आपको, महाभारत के बिल्कुल अंत में दुर्योधन और भीम की लड़ाई हुई थी, जब दुर्योधन पानी में जाके छुप गया था, फिर उनको निकाला बाहर, फिर दुर्योधन भीम की लड़ाई हुई, तो वहां पर बलराम जी आएगा, वहां पर बलराम जी वहां पे तीर्थ यात्रा करने गए हुए थे, वाए और उन्होंने 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 देखा वाए, तो सार कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज पांडव अर्जुन सोच रहे थे ये बलराम जी ये कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब ये अब कुछ गड़बड़ करेंगे। सो बलराम जी आए वहां पर, उन्होंने भीम से और दुर्योधन से कहा भैया तुम दोनों लड़ो मत, कोई फायदा नहीं लड़ने का, और उन्होंने कोशिश की रोकने की, एटलीस्ट एक्सटर्नली ऐसा लग रहा है, मगर एक्चुअली इंटरनली बलराम जी ने कहा दुर्योधन तुम भी मत लड़ो, भीम भी नहीं लड़ेगा, क्योंकि इस लड़ाई का कोई हल नहीं आएगा, क्योंकि तुम दोनों इक्वल पावर के हो, एटलीस्ट बलराम भीम के पास पावर है, तुम्हारे पास टेक्निक है, बलराम जी ने बोला, क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाया है, तुम अपनी शक्ति से नहीं हार सकता, तुम अपने जो गदा युद्ध के जो टेक्निक है उसके से नहीं हारोगे, तो युद्ध चलता रहेगा, बंद कर दो। मगर दोनों ने सुनी नहीं और दोनों फाइट करते रहे, बलराम जी वहां से गुस्सा होकर, एक्चुअली बलराम जी को कृष्ण पे भी गुस्सा आया, ये क्या है यार, ये अर्जुन और ये मेरी सुनी नहीं रहे लोग, बलराम जी वहां से चले गए। ऐसा लग रहा है कि बलराम जी ने कृष्ण पे गुस्सा किया, और वहां कृष्ण के एंटी हैं, कृष्ण पे गुस्सा कर दिया कि आपने अर्जुन से सुभद्रा की को भगवा दिया, ये क्या कर दिया, मगर एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था, बलराम जी सोच भी नहीं सकते भगवान कृष्ण के एंटी होने की, क्योंकि कृष्ण खुद ही तो है वो। आप अपने एंटी हो सकते हो कभी? आप अपने दुश्मन बन सकते हो कभी? आप प्लानिंग कर सकते हो मैं अपने आप को मारूंगा, होता है कभी? कभी नहीं ऐसा, आप सुसाइड जरूर कर सकते हो मगर अपने दुश्मन नहीं बन सकते आप कभी, क्यों हो सकता है? आपसे पूछे आपका सबसे बड़ा, मैं अपना दुश्मन बन गया हूं, मुझे बहुत हेट है अपने आप से, ऐसा कभी नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। सो बलराम जी कभी भी भगवान कृष्ण के एंटी नहीं हो सकते। वो तो बलराम जी ने, इसलिए बलराम जी ने वहां पर ऐसा दिखाया भगवान के एंटी होना, वो एक ही कारण से। कोई बता सकता है, कोई दिमाग लगा सकता है क्यों एंटी हो गए थे? क्यों क्यों भगवान जी सुभद्रा, जब जब शादी हुई कृष्ण, जब कृष्ण ने अर्जुन को भगा दिया सुभद्रा से, तो भगवान बलराम जी बहुत गुस्सा हुए थे। उन्होंने कहा तो अर्जुन को मारूंगा, कृष्ण को भी बोला 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 तुमने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों हो गया ऐसा? There's a secret in this. So, मैं एक्चुअली पता है बलराम जी की लाइफ पढ़ के आप भक्ति सीख जाओगे क्या होता है। सो हमें लगता है कि भक्ति मतलब, भक्ति ऐसे ऐसे समझना बड़ा मुश्किल है। भक्ति मतलब प्रेम, जहां पे केवल भगवान के बारे में सोचा जा रहा है, भगवान के यश और भगवान के की महिमा का गुणगान करने के लिए भक्त कुछ भी कर सकता है, भगवान के एंटी भी आ सकता है। सो बलराम ने सोचा कि मैं भगवान के एंटी जाऊंगा, बलराम ने कहा अर्जुन को मार दूंगा। तो कृष्ण भगवान आए, कृष्ण भगवान को भी बोल रहा था आप ऐसे कर रहे हो, तो कृष्ण ने कहा ठीक है बलराम बहुत सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तुम देखो क्या हो रहा है। तो कृष्ण भगवान ने बोला था सुभद्रा, सुभद्रा जब अर्जुन तुम्हें किडनैप करे तो रथ तुम चलाना, अर्जुन नहीं चलाएगा। तो मतलब अफकोर्स जब अर्जुन किडनैप करने आया तो सुभद्रा ने कहा तो पीछे बैठे मैं चलाऊंगा। तो उन्होंने कहा देखो भाई सुभद्रा रथ चला के गई, अर्जुन तो चला के नहीं गया,
सुभद्रा ने
किडनैप किया अर्जुन को, भगवान ने ही लॉजिक दिया। तो सुभद्रा जब करना आती है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका उसका ही मन है तो क्या कर सकते, वो चाहती है। तो बलराम जी किसी तरह पैसे पैसे संतुष्ट होगा, मगर बलराम जी ये दिखा रहे थे अपनी लीला से कि अगर मैं भी कृष्ण के एंटी होऊंगा, ये क्या है? तो बलराम जी दिखा रहे थे अगर मैं भी किसी भक्त के एंटी हूं और उस भक्त की साइड भगवान है तो सब कुछ नहीं हो सकता। बलराम जी सोच लेते मैं अर्जुन को मारूंगा, और तो कृष्ण भगवान ने बचा लिया। सो बलराम जी अपनी लीला से दिखा रहे हैं कि जिसके साथ कृष्णा है उसकी कभी भी हार नहीं हो सकती, न वे भक्त प्रणश्यति। अगर मैं भी उसके एंटी हो जाऊं, मैं मतलब बलराम जी मतलब भगवान स्वयं, बलराम से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? अगर इतना शक्तिशाली पुरुष भी एंटी हो जाए तब भी कोई नहीं बिगाड़ सकता जिसकी साइड कृष्णा है, बलराम जी दिखाना चाहते थे। और यही बलराम जी एंड में भी दिखाना आते थे, जब भीम और दुर्योधन को मना किया लड़ो मत, फिर भी लड़ रहे हैं, तो बलराम ने सोच लिया कि ये तो जरूर कृष्ण की ट्रिक है, कृष्ण ही नहीं चाहता ये युद्ध रोकना, और इसलिए कृष्ण भगवान ने ये प्लॉट चलाए। तो बलराम जी समझ के अपना वापस चले गए, ये दिखाने के लिए कि कृष्ण के प्लान में कोई इंटरफेयर कोई नहीं कर सकता। बलराम जी दिखा रहे थे कि चलो मैं इंटरफेयर करना है तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया, और मुझे जाना पड़ा वापस। सो इसलिए भागवत गीता कह रही है नी यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय और भूतेर नीतिर्ममा। जहां पे कृष्ण है और उनके भक्त हैं वहां हमेशा विजय है। चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, चाहे बलराम जी स्वयं, चाहे भीष्म पितामह भी एंटी हो जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका, कोई कुछ नहीं कर। इसलिए एक्चुअली प्रभुपाद से पूछा था किसी डिवोटी ने कृष्ण बलराम मंदिर में कि प्रभुपाद इनमें बड़ा भाई, इनमें बड़ा कौन है, कृष्ण है बलराम जी? तो सबने कहा बलराम, मगर एक्चुअली प्रभुपाद ने कहा कृष्ण, क्योंकि अगर आप फोटो देखोगे ना तो कृष्ण भगवान ने हाथ रखा हुआ है बलराम जी के कंधे में, देखिए वृंदावन में जो आप जाओगे तो हाथ रखा हुआ है। सो प्रभुपाद ने कहा देखो कि कृष्ण भगवान ने बलराम जी के कंधे पे हाथ इसलिए नहीं कि वो सहारा ले रहे, इसलिए कि बलराम जी को आश्वासन दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं।
लेकिन जब भीम ने जगह पर वार किया था दुर्योधन के, तब भी बलराम जी तो एंट्री, तब भी गुस्सा हो गए थे,
तभी तो गुस्सा हो गए थे कि भीम ने रूल्स फॉलो नहीं किए। तो कृष्ण भगवान ने बलराम जी को बोला, वहां पर एक्चुअली महाभारत में आता है, कृष्ण भगवान ने बलराम जी को बोला कि बलराम भीम ने युद्ध के नियम तोड़े हैं, मगर युद्ध की इंग्लिश में ही he broke the rules of fight, but he didn't break the spirit of fight. अब इसको हिंदी में कैसे कहेंगे? उन्होंने युद्ध के नियम तोड़ दिए, मगर स्पिरिट ऑफ फाइट कैसे कहेंगे? भावना सही नहीं है,
लड़ाई की भावना को नहीं।
उन्होंने युद्ध के नियम तोड़ दिए, मगर उन्होंने धर्म को नहीं तोड़ा। धर्म की जो जो इंटेंशन है, इंटेंशन समझते हो ना आप लोग, वो नहीं तोड़ी। क्योंकि युद्ध में, क्योंकि भगवान ने कहा ठीक है नियम तो तोड़ दिए, मगर क्यों तोड़े हैं? तो देखो धर्म की स्थापना के लिए तोड़े, इसलिए गलत नहीं है। तो एक्चुअली भगवान ने इस लीला से हमें यह भी सिखाया कि धर्म क्या है। इसलिए व्यासदेव महाभारत में लिख रहे हैं कि महाभारत जो पढ़ लेगा वो इंसान बन जाएगा, उसको धर्म समझ आ जाएगा पूरी तरह। क्योंकि ऐसे धर्म समझना बड़ा मुश्किल होता है कि भी देखो उन्होंने नियम तोड़ दिया, कृष्ण भगवान ने कर्ण को मार दिया ना कर्ण को, ये भगवान ने क्या कर दिया, ये तो नियम तोड़े हैं। तो भगवान सिखा रहे हैं कि धर्म, जो बंदर होते हैं उनको धर्म समझ नहीं आता। हम सब बंदर है ना, बाली को ये तो बोला था राम ने, बाली कहता आपने मुझे क्यों मारा है, वाल्मीकि रामायण पढ़ो, राम ने बोला कि तुम जैसे बंदर नहीं समझ सकते धर्म, मुझे क्यों मारा है, बकवास कर रहे हो। फिर वहां पर राम ने रीजन दिए कि तुम्हें इसलिए मारा है, फिर बाली ने कहा वे ठीक है मुझे समझ आ गया। सो हम जैसे लोग धर्म नहीं समझते, इसलिए महाभारत लिखा है। सो भगवान ने क्यों कर्ण को मारा, ऐसा लगता है कि भगवान ने नियम तोड़ा है, मगर नियम क्यों तोड़ा है? नियम युद्ध का नियम तोड़ा है धर्म की स्थापना के लिए। धर्म की स्थापना के लिए आप कोई भी नियम तोड़ सकते हो, अच्छाई के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, अच्छाई के लिए कुछ भी करना बुराई थोड़े ना, वो तो अच्छाई हो गई। सो इसलिए भगवान ने यहाँ पे बोला, वो एक्चुअली शिक्षा देने के लिए। मगर बलराम जी गुस्सा हो गए थे, तो बलराम जी की गुस्सा हो गया, भगवान ने समझाया, बलराम जी समझ गए और बलराम जी चले गए। तो बलराम जी दिखाना चाहते थे कि कृष्णा बहुत इंटेलिजेंट है, कृष्ण एक्चुअली, बलराम जी प्रूफ करना चाहते थे कि भगवान ने जो भी युद्ध में किया है महाभारत के युद्ध में छल नहीं किया। तो भगवान के मुंह से उन्होंने निकलवा दिया कि ये सब क्यों कर रहे हैं, और एंड में महाभारत में भगवान ने बोल दिया कि भी जो भी मैं कर रहा हूं वो संसार के कल्याण के लिए कर रहा हूँ, तो खराब ही नहीं। और फिर भगवान ने कहा चलो हो गया वापस चले। सो ये लोगों के माइंड में कंफ्यूजन ना रह जाए, इसलिए बलराम जी ने जानबूझ के ऐसा किया। सो इस तरह से बलराम जी हमेशा भगवान के बारे में सोच रहे हैं, इसको कहते हैं भक्ति। सो भक्ति के लिए आप भगवान के एंटी भी हो सकते हो, यू कैन इमेजिन, ये रियल भक्ति है। मतलब अभी तो चलो हम ये सोच भी नहीं सकते भगवान के एंटी होना या करना, अभी तो ये सब सोच लेंगे तो सीधा नरक चले जाएंगे। मगर एक महाभारत में कृष्ण लीला में बलराम जी स्वयं भक्ति है ना, भक्ति का बल देते हैं, तो बलराम जी कृपा से आप में भी ऐसा बल आ जाएगा कि आपका फोकस हमेशा भगवान के आनंद पे रहेगा, और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। लौकिक मर्यादा तोड़नी है तोड़ दोगे, वैदिक मर्यादा तोड़नी है तोड़ दोगे, केवल आपके सामने एक ही लक्ष्य होगा कि भगवान को आनंद देना है। वो बलराम जी सिखा रहे अपनी लीलाओं से, इसलिए बलराम जी का चरित्र पढ़ना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, मगर अगर आपने समझ लिया तो आपको भक्ति करना आ जाएगी। फिर आपको ये नहीं, आपको अभी तो आप सोचते हैं भक्ति करना क्या है कि थोड़ा लेक्चर सुनना, अपना जप कंप्लीट करना, ये सोचते हैं ना हम लोग, या प्रसाद लेना, मगर ये तो ये है, मगर ये शुरुआत है, दी एंड नहीं है। ये
समझते थे कि हम बलराम जी
दुर्योधन
के पक्ष में थे,
ऐसे सोचते थे ना हम लोग सब, मगर ऐसा, बट बलराम जी अपनी, इसलिए बलराम जी ऐसी उल्टी फुल्टी चीजें कर रहे हैं हमें, हमारे माइंड को एक एक्सपैंड करने के लिए कि भक्ति के लिमिट्स देखो क्या है। नहीं, सिर्फ भक्ति ऐसा नहीं कि थोड़ा कीर्तन कर लिया, जप हो गया और हो गया, वो तो हम सोचते हैं, मगर भक्ति की जो सीमा है वो असीम है। भक्ति कहाँ कहाँ जा सकती है और कैसे कैसे काम करती है अभी हम सोच भी नहीं सकते। वो सब दिखाने के लिए बलराम जी लीला कर रहे हैं, कृष्ण कुछ अलग दिखाने के लीलाएं कर रहे हैं, गोपियां कुछ अलग दिखाने के लीलाएं कर रही हैं। तो ये सारी चीजें समझने से हम मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर एक मैच्योरिटी आ जाती है कि भक्ति क्या है, वरना हम बहुत एक न्यूफाइट प्लेटफॉर्म पे रह जाएंगे। इसलिए बलराम जी की कृपा के बिना मैच्योर नहीं हो सकते। नया महात्मा बल ही निर्लभ्य हो नहीं हो गया मैच्योर। आपको सिर्फ लगेगा कि थोड़ा जप करना, थोड़ा प्रसाद देना, यही भक्ति है। कुछ लोगों को तो वो भी नहीं लगता, कुछ लोग लगता है कि थोड़ा लेक्चर सुन लें बस उतना काफी है, वो भक्ति है। कुछ लोग तो वैसे भी नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं कीर्तन गा लो वो भक्ति है। मतलब बहुत ही अभी बहुत ही लो प्लेटफॉर्म है अभी डिवोशन का। मतलब भीष्म पितामह के लिए भक्ति क्या थी? भगवान पे तीर चलाना। यू कैन इमेजिन, भगवान को मारना वो भक्ति थी उनके लिए। ये कैसे हो गया, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे ही भगवान ने बोला था भीष्म को, भीष्म अगर तुम मेरे एंटी नहीं होगे तो ये युद्ध नहीं होगा। ये दुर्योधन किसके बल पे युद्ध कर रहा था? भीष्म। तो जैसे बलराम जी ने दुर्योधन की साइड ली, ऐसे भीष्म ने भी दुर्योधन की साइड ली कि दुर्योधन का अहंकार बढ़ जाए और उस अहंकार के चक्कर में अंधा हो जाए। वो भी देख पाए कि कृष्णा सामने है। उसने कहा गीता में देख लो कि भीष्म मेरे साथ है, भीष्म के बल पे लड़ रहा था, कर्ण के बल पे नहीं। अगर भीष्म नहीं होते तो फिर कर्ण भी चूहा बन के बैठ जाते, दोनों बैठ जाते एक साइड में, कुछ नहीं कर सकते दोनों। सो अहंकार बढ़ाने के लिए भीष्म रहे और कृष्ण ने बोला कि तुम्हें सेवा करनी है मेरी, मेरे एंटी रहना है, उसका अहंकार आखिरी दम तक तुम्हें उसके साथ रहना है, उसका बल बढ़ता रहे, वो मेरे एंटी काम करता रहे, सारे गंदे राजाओं को लाएगा और हम दोनों मिलके कृष्ण बलराम हम दोनों सबको मार देंगे, हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी होगी। और भीष्म पितामह अंतिम समय तक भगवान की सेवा करते रहे, सेवा करते रहे और ही सैक्रिफाइस हिज लाइफ। सो ये इसलिए इससे तो बलराम इसलिए भगवान के भक्त इतनी सारी लीलाएं करते हैं। और भगवान के एंटी काम करने को अच्छा थोड़ा ना लगता है उनको, नहीं?
चीर हरण में भी साथ दिया भीष्म पितामह जी ने उस समय।
भीष्म पितामह को कृष्ण ने बोला था कि कुछ करना मत, एक दिन पहले कृष्ण ने बोला था भीष्म को एक दिन पहले जाकर कि कल जो होगा आपको कुछ करना नहीं है, ये मेरा ऑर्डर है, कि जिससे दुर्योधन को और फेथ आ जाए कि भीष्म मेरे साथ ही है, वरना दुर्योधन युद्ध नहीं कर सकता। तो उसको पूरा फेथ, उस इंसिडेंट के बाद दुर्योधन को पूरा फेथ आ गया कि भीष्म अब हमारे साथ ही है भैया, ठीक है। मतलब चाहे जैसे भी हो, चाहे मन से नहीं हो, मगर धर्म और कुल की मर्यादा से तो अटके हुए हमारे साथ, हमारी हेल्प करेंगे। मतलब इतना होने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर तो हमारी हेल्प करने वाले हैं। उसको डाउट सारे समझे खत्म हो गए, क्लियर हो गए। उसने कहा चलो यार अब हम कर सकते हैं, दैट्स ऑल। सो दैट्स इज अ ग्रेट प्लान देयर। तो भगवान के प्लान को समझना यही भक्ति है। और मैं बताया था कि बलराम जी ने जो भी भगवान के एंटी काम किया उसमें उनको अच्छा थोड़ा ना लगा होगा, नहीं? दुख तो होता ही है, भगवान के एंटी काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी सेवा थी बलराम जी की, ऐसे बिहेव करना, एंटी होना, गुस्सा करना भगवान पे, ये सबसे बड़ी सेवा थी। भीष्म की सबसे बड़ी सेवा थी। और ये सेवा महान भक्तों को मिलती है, जो भक्त समझते हैं कि एक्चुअली भक्ति क्या है। सो इसलिए आज बलराम जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान बलराम जी हमें एक्चुअली भक्ति सिखाएं कि भक्ति क्या होती है, हमें आशीर्वाद दें कि हम भक्ति को समझ पाएं, सिर्फ भक्ति को प्रैक्टिस नहीं करते रहे अंधाधुन होकर। ऐसा भी कर सकते हो, अंधे होके बस कर सकते हो, बस करते जाओगे, मगर एक्चुअली भक्ति को समझना और उसको हृदय में हृदयंगम करना बिल्कुल अलग बात होती है। सो वो आज बलराम जी की कृपा से हमें प्राप्त हो सकती है, वो भक्ति भावना, भक्ति भावना। दैट्स बलराम जी। बलराम जी का एक नाम क्या है और हलदर है, क्या पकड़ते हैं भगवान? हल एक और नाम है, बलभद्र भी नाम है, हलायुद्ध, बलदेव तो या बलदेव इस एक और नाम है, दाऊजी दाऊजी के भैया कृष्ण का नहीं आज बहुत खाते हैं वृंदावन में एनीवे हरे कृष्णा कुछ रोहिणी नंदन कुछ पूछना कुछ कहना है स्टॉप है हरे कृष्ण।
पिछले साल आपने बताया कि कुछ गुरु का भी रोल,
बलराम जी आदि गुरु हैं हमारे। बलराम क्यों गुरु हैं? क्योंकि बलराम जी सिखा रहे हैं ना भक्ति हमें अपनी क्रियाओं से, अपने शब्दों से, इसलिए बलराम जी हमारे आदि गुरु हैं। जो बलराम जी को नहीं समझेगा वो भगवान की भक्ति नहीं समझ सकता कभी। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, नहीं समझ पाऊंगा। ओके, कोई क्वेश्चन है?
युद्ध चल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने चक्र वो पहिया मारने के लिए जो उठाया,
पहिया पहिया,
हाँ, भीष्म और अर्जुन उनके पैर पकड़ रहे हैं, भीष्म वो भक्ति थी वो उसमें, या उनकी उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे थे, इसलिए कर रहे।
किसकी पूर्ति के लिए?
भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा ले रखी थी युद्ध में कुछ शस्त्र उठाऊंगा, लेकिन जो भीष्म पितामह मारने के पहिया उठा रहे हैं अर्जुन के पैर पकड़ रहे हैं,
तो किसकी भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं?
ये ऐसा
अपनी प्रतिज्ञा
तोड़ रहे हैं
वहां पर भगवान जो है, भगवान ने दिखा रहे हैं मैं अपने भक्त के लिए तोड़ सकता हूँ, अपने भक्त की रक्षा के लिए सब कुछ कर सकते हैं, भगवान धर्म की स्थापना के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फायदे क्या अपनी प्रतिज्ञा पे अटके हुए? नहीं, फायदा ही हो सकता। कर्ण भी तो इसलिए मरा है, अपनी प्रतिज्ञा पे तो अटका हुआ था, दुर्योधन ने मेरी मदद की थी, मेरा मान सम्मान रखा था, बताया ना उनको जब अर्जुन से फाइट हुई थी, इसलिए मैं उसको कभी नहीं छोड़ सकता। भीष्म ने आके समझाया भी, भाई तुम उन सबके भाई हो अभी तुम उसके छोड़ दो, आ जाओ तो तुम्हें राजा बना देंगे, सम्राट पूरे संसार का, उसकी बुद्धि में घुसा ही नहीं क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञा पे अटका हुआ था। सो अपनी प्रतिज्ञा पे को अपनी प्रतिज्ञा भी रखना एक तरह से स्वार्थी है कि मैं ऐसा सोच रहा हूं ऐसी होगा ऐसी होगा, चाहे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये धर्म, ये अधर्म होगा, इससे इससे जो निष्कर्ष है वो इसका फल गलत होगा, और फिर भी अपनी प्रतिज्ञा पर अटके, उसको फायदे क्या प्रतिज्ञा का? भगवान ने तोड़ दी प्रतिज्ञा, भगवान ने कहा टू हेल विद दिस प्रतिज्ञा, नॉनसेंस है, अगर भीष्म नहीं मरेंगे आज तो युद्ध खत्म ही नहीं हो सकता, बल्कि एक्चुअली अर्जुन मरने वाला था उस दिन, भगवान पहिया नहीं उठाते, अर्जुन गया था, अर्जुन मर जाता, तो भगवान ने उठा लिया भैया। कॉन्सेप्ट है मगर हायर कॉस्ट के लिए तोड़ सकते हैं, वरना तो तोड़नी नहीं चाहिए प्रतिज्ञा, अपने लिए प्रतिज्ञा बने अपने लिए तोड़ दी, ये तो नॉनसेंस है। हायर कॉस्ट के लिए प्रतिज्ञा की कोई वैल्यू नहीं है, ये वो भी तो प्रतिज्ञा है एक, भगवान की दो प्रतिज्ञा थी, एक धर्म की स्थापना होना संसार में, एक युद्ध में नहीं उठाना, तो कौन सी प्रतिज्ञा आता है इंपॉर्टेंट है? सो एक प्रतिज्ञा के लिए दूसरी प्रतिज्ञा तोड़ी गई, अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं तोड़ी, हाँ यार मेरा मन नहीं कर रहा अब क्या करें, उठा लेते हैं चलो, दैट्स एक्चुअली कंप्लीट नॉनसेंस। नहीं, वो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं, नहीं यहाँ ठीक है हम अब रोज मंगल आरती उठेंगे सुबह सुबह, यार मन नहीं कर रहा नींद आ रही है तोड़ देते आज नहीं उठेंगे, हम लोग ऐसे कमीने हैं, सॉरी। सो हम लोग, भगवान ऐसे नहीं है, भगवान ने संसार के कल्याण के लिए तोड़ी, अपने लिए तोड़ ही नहीं सकते वो लोग, अपने प्रतिज्ञा तोड़ ही नहीं सकते वो लोग, पांडव नहीं तोड़ सकते, द्रौपदी ने बोला नहीं था पांडवों को कि बाट के खा लो, सॉरी कुंती ने द्रौपदी के लिए बोला था ना, पांडवों ने शादी कर ली पांचों ने, दैट्स फनी, मतलब एक ऐसी बोल दिया माँ ने, माँ के वचन रखने के लिए धर्म पालन करने के लिए उन्होंने उन्होंने कहा भाई धर्म अधर्म हो जाएगा हम नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम अगर वो मना कर देते तो वो अधर्म हो जाता, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते ना शादी, चलिए माँ ने बोल दिया, माँ के आदेश पालन करना जरूरी है, अभी अब पता नहीं छोड़ो यार, वो अधर्म नहीं था, क्योंकि व्यासदेव ने आके समझाया था कि कर लो, हाँ द्रौपदी का पास्ट लाइफ थी उसमें, तो व्यासदेव ने कहा कोई चिंता नहीं है ऐसा होना ही है इसलिए करना पड़ेगा, तो भगवान ने प्रेरणा की थी कुंती को। सो भगवान के प्लान्स परफेक्ट हैं, वो तो हमें डिवोटी से समझने पड़ेंगे। महाभारत में लिखी हुई है मगर आपको सब चीजें नहीं है,
ये
वो और पुराणों में है, इसलिए तो कहेगी महाभारत भक्तों के हाथ पढ़ो, भक्तों का नहीं पढ़ेंगे तो हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, हाफ नॉलेज, मंत्र मंत्र तंत्र विशारद ये सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, गुरु ऐसा होना चाहिए जो मंत्र में, पुराणों में और शास्त्रों में विशारद, विशारद समझते हैं, एक्सपर्ट है, तब वो आपकी कॉन्ट्रडिक्शन सॉल्व कर देगा, आपको बता देगा। खुद से पढ़ने से तो महाभारत खुद ही पढ़ लोगे, अकल्याण हो जाएगा। खुद से कुछ भी पढ़ना, खुद से गीता भी पढ़ लोगे ना, आप असुर बन सकते हो गीता पढ़ के, 100% हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो गया मैंने तो गीता पढ़ी है, मैं असुर कैसे बन जाऊंगा, बन जाओगे आप गीता पढ़ के, मुझे आके बोलोगे चलो नीचे उतरो मैं बोलूंगा लेक्चर, क्यों ये क्या हो गया, आपने कितनी बार गीता पढ़ी है, मैंने चलो 50 बार, मैंने 1000 बार पढ़ी है, आप क्या कर रहे हो ऊपर बैठ के, ये हो जाएगा। सो खुद से पढ़ने से तो गड़बड़ी है सब, इसलिए खुद से कभी नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए खुद से पढ़ के बलराम जी को थोड़ा ना समझ पाओगे, कोई नहीं समझ सकता, तभी तो बलराम जी को पूजा नहीं करता,
तो
वही बात है। ओके सो दैट्स इट, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, श्री बलराम जी की जय, बलराम पूर्णिमा की जय।